ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पाकिस्तान के निशाने पर भारत के सैन्य ठिकाने थे। भारत ने पाकिस्तान के 4 ठिकानों पर जवाबी गोलीबारी की। पाकिस्तान ने तंगधार उरी उधमपुर में भारी गोलीबारी की। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान ने कायरतापूर्ण कार्रवाई की। उसने LOC पर घुसपैठ की कोशिश की। पाकिस्तान के कई ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराए। उनके मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पाकिस्तान की गोलीबारी में कई जवान घायल हुए हैं। संवाददाता सम्मेलन को कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी संबोधित किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमलों में 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर ले से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था।
कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की सेना नागरिक उड़ानों को हमले के दौरान ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है।
7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है।
पुंछ में रिहायशी घरों पर पाकिस्तान के हमले में 2 भारतीय छात्रों की मृत्यु हो गई है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिलहाल बंद कर दिया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपना पक्ष रखेगा। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ने अमेरिका से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति और भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी शामिल हुए। बैठक में रक्षा सचिव आरके सिंह भी उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशकों के साथ बैठक की। सरकार देश में आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए लगातार काम कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर तैयारियों और अंतर मंत्रालय समन्वय के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और तैयारियों को लेकर अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसी तरह की एक बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए आज शाम होने जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कहा है कि ATM, नकद जमा और निकासी मशीनों के साथ साथ सभी डिजिटल सेवाएं पूरी तरह से चालू हैं। बैंकों ने ग्राहकों को अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। इस बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है कि देश भर में पर्याप्त ईंधन भंडार है और आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से चल रही हैं। इंडियन ऑयल ने लोगों से घबराहट में ईंधन की खरीद के लिए पेट्रोल पंप पर अनावश्यक भीड़ से बचने को कहा है। इस बीच नागरिक सुरक्षा निदेशालय आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी में ITO पर लगाए गए एयर रेड सायरन का परीक्षण करेगा, जो 15 से 20 मिनट की अवधि के लिए होगा। इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। आनंद कुमार के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध हैं। श्री चौहान ने नागरिकों से किसी भी आपात स्थिति में शांत रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आगामी फसलों के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां हैं।
किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरपूर भंडार है हमारे पास। हम जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों से हमारे अधिकारी बात करेंगे, मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा करके उनको कैसे बीजों की इन परिस्थिति में जरूरत है उसका भी इंतजाम करके रखेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने भी तय किया है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर कहीं से हमारे भाई बहन आते हैं तो उनको तत्काल रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए।
इस बीच उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में शामिल व्यापारियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं तथा व्यावसायिक संस्थाओं को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जमाखोरी या भंडारण में लिप्त किसी भी व्यक्ति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा। सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय के रिपोर्टिंग न करने को कहा है।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऐसी संवेदनशील जानकारी और सूत्र आधारित सूचना अभियान की प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है। मंत्रालय ने कारगिल युद्ध, 2008 मुंबई आतंकी हमला और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए समय पूर्व रिपोर्टिंग के जोखिमों का हवाला दिया। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा समय समय पर ब्रीफिंग की अनुमति है। रक्षा मंत्रालय ने सभी हितधारकों से राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
पाकिस्तान की आक्रामकता के विरुद्ध भारत के हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब से परेशान आतंक का गढ़ पाकिस्तान अब डिजिटल क्षेत्र में गलत सूचनाएं फैलाने में जुट गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो और गलत चित्रों का उपयोग कर पाकिस्तान वैश्विक नैरेटिव विकृत करने और जनता की धारणा प्रभावित करने की निरंतर कोशिश कर रहा है। इस महत्वपूर्ण समय में प्रत्येक जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। कोई भी संदिग्ध सामग्री, विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई भी जानकारी की सूचना पीआईबी फैक्ट चेक को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। दिल्ली हवाई अड्डे पर आज कुल 138 उड़ानें रद्द की गईं। इसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय आगमन, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान, 63 घरेलू आगमन और 66 घरेलू प्रस्थान शामिल हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एयरलाइन से उड़ान की अद्यतन जानकारी और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था के बारे में जानकारी लें। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्रशासनिक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषकर स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभागों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सुरक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा करते हुए आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई निर्देश जारी किए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य की सतर्कता और तैयारियों की समीक्षा के लिए आज गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती जिलों कच्छ, बनासकांठा, पाटन और जामनगर के प्रशासन, पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य सरकार ने 9 ड्रोन रोधी प्रणालियां खरीदने का निर्णय किया है। इन्हें नार्को आतंकवाद पर नजर रखने के लिए राज्य के 6 सीमावर्ती जिलों में तैनात किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। श्री धामी ने संबंधित अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही वहां तैनात प्रशासनिक इकाइयों को अलर्ट रहने को कहा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वॉकी टॉकी उपकरणों की लिस्टिंग और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इनमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, लाइसेंसिंग जानकारी और उपकरण के प्रकार की मंजूरी का उचित खुलासा नहीं किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नई दिल्ली में निशानेबाजी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के पार्थ राकेश माने और शंभवी श्रवण क्षीरसागर ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम युवा वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इन खेलों में शंभवी ने यह दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल के शेष सत्र को एक सप्ताह के लिए निलंबित करने की घोषणा की है। बीसीसीआई ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के परामर्श से स्थिति के व्यापक आकलन के बाद संशोधित कार्यक्रम स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।